अगले कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इसकी विवेचना कीजिए। उत्तर, आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवादी विचारधारा साहित्य में गिरिजा कुमार माथुर का स्थान अग्रणी है। प्रयोगवादी साहित्य मूलतः डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के साथ विकसित हुआ। यही नवलेखन के प्रारंभ से प्रयोगवादी काव्य का विकास शुभारंभ माना जाता है। तार सप्तक के उपरांत दूसरा सप्तक सन 1949 में प्रकाशित हुआ। नवकाव्य के इतिहास में दूसरा सप्तक एक महत्वपूर्ण घटना है। तार सप्तक के कवि थे रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और अज्ञेय। तार सप्तक के महत्वपूर्ण प्रकाशन से हिंदी काव्य में जो नई धारा विकसित हुई उसमें श्री गिरिजा प्रसाद माथुर का बड़ा ही योगदान रहा। श्री माथुर द्वारा रचित नाश और निर्माण काव्य में पूर्ण रूप से प्रगतिवाद को परिलक्षित किया है। प्रयोगवादी का मुख्य लक्षण अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक कवियों टी एस इलियट, अजरा पाउंड, टी एच लॉरेंस एवं ई किंग्स आदि से पूर्ण प्रभावित है। प्रयोगवादी कविता में विज्ञानवाद, मनोविज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद तथा फ्रायड के सामाजिक सिद्धांतों का पूर्ण प्रयोग किया गया। फ्रायड के प्रभाव के कारण प्रयोगवादी कवियों को आधुनिक युग के हर सामान्य मानव में यौन वर्जनाएं एवं कुंठाएं दिखाई पड़ती हैं। श्री माथुर जी की काव्य में भी यौन वर्जनाओं की विशेषता परिलक्षित होती है। जीवन में फिर लौटी मिठास है, गीत की आखिरी मीठी लकीर सी, प्यार में डूबेगा गोरी सी बाहों में। प्रगतिवादी काव्य प्रगतिशील काव्य का विकसित स्वरूप है। श्री माथुर ने प्रगतिवाद सर्व लक्षणों को अपने काव्य में पिरोने का प्रयत्न किए हैं। चूंकि छायावाद प्रगतिशील काव्य एवं प्रयोगवादी काव्य तथा नई कविता मूलतः एक दूसरे के वाद प्रतिवाद एवं संवाद के स्वरूप हैं, फलतः कवियों के विचार में भी सभी स्वरूप एक साथ परिलक्षित होते हैं। जैसे आज है केसर रंग रंगे वन, रंजित शाम भी फागुन की खिली पीली कली सी, केसर के वसनों में छिपा तन, सोने की छां सा बोलती आँखों में, पहले वसंत के फूल का रंग है। श्री माथुर के उपयुक्त काव्य में जहाँ छायावादी पुट है वहीं फ्रायड की कल्पना और प्रयोगवादी विकास। प्रयोगवादी काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है विज्ञानवाद एवं यथार्थवाद। प्रयोगवादियों ने मानव जगत को साहित्यिक दृष्टिपात, यंत्र जगत की लघु वस्तुओं को भी अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रकार की कविता में पहली बार चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, बाथरूम, गर्म पकौड़ी, रेलवे, पिस्टन आदि का भरपूर चित्रण हुआ है। जैसे रात के अंधेरे में डूबी हुई शहर कस्बे गांव खेत जंगलों को, स्याह रंजीदा जमीन को, इंजन के मोटे बड़े पहिए, पिस्टन के आगे पीछे चलते गजों से नापते चले जाते हैं। प्रयोगवादी काव्य की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि वे मानव जीवन को भी विज्ञान से तुलना करते हैं। अनेक उदाहरण एवं उपमाएं भी साधारण वैज्ञानिक यंत्रों से देते हैं। जैसे नीचे दबी कमजोर व्यक्ति सी धरती सिमटती चली जाती है, जैसे सिलाई की मशीन के नीचे तेजी से पीछे को कपड़ा खिसकाता है। प्रयोगवादी कविता में भाव अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से हुई है और प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन मिलता है। साथ ही प्राचीन उपमाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन उपमान भी अभिव्यक्त हुए हैं, जैसे अंधेरे की क्लौंच ने खिड़कियों के शीशों को दर्पण बना डाला है, जैसे वह काजल धुआं लगा कांच हो जिसमें हम सूर्य ग्रहण देखने के बजाय भीतर की बत्तियों का, आपस की सूरतों का अक्स देख रहे हों। फलतः प्रयोगवादी कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन के तमाम विसंगतियों व विडंबनाओं, जड़ता व कुंठा, हताशा व निराशा, निरर्थकता, बोध, अजनबीपन, अनास्था व पराय बोध जैसे अनेक पक्षों को जो मानसिक संघर्षों व आंतरिक धरातलों के द्वंद्व गहराई से जुड़े हैं, इन समस्त गुणों को श्री माथुर जी बड़े ही बौद्धिकता व चमत्कारी ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। श्री गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनमें प्रयोगवादी काव्य की समस्त चारित्रिक विशेषताएं उनके काव्य में एक साथ पाई जाती हैं। माथुर मध्यम वर्गीय जीवन रहस्य को बड़े ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किए हैं, वास्तविकता पूर्णतः उधेड़ बुन कर रख दिए हैं, जैसे अब इरादों, दिलासों और दावों का सबको खून नाटक करना आ गया है, अब कर्म की जगह सिर्फ शब्द आ गया है। प्रश्न, श्री गिरिजा कुमार माथुर के कलात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, श्री गिरिजा कुमार माथुर हिंदी काव्य साहित्य के प्रयोगवादी धारा के मूर्धन्य कवियों में से एक हैं। उन्होंने काव्य कला को कला के लिए नहीं अपितु काव्य जीवन के लिए में विश्वास किया। प्रयोगवादी कवियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण यह रहा कि वे जीवन को बड़े यथार्थवादी तरीके से देखते हैं, और श्री माथुर ने भी उस यथार्थवादी को उसी रूप में प्रस्तुत किया। फलतः जहाँ तक कला पक्ष का प्रश्न रहा, उस पर वे श्रृंगार रस के कवियों की भांति अलंकृत शब्दों में विश्वास करते हैं, न कि वीर रस के कवियों की भांति अतिशयोक्ति अलंकार में। वे जीवन को जीवन के लिए में अधिक विश्वास करते हैं। फिर भी माथुर जी छायावादी विचारधारा से भी पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं, कहीं कहीं तो पूर्णतः छायावादी विचारकों की भांति ही परिलक्षित हुए हैं, जैसे आज है केसर के रंग रगे वन, रंजित शाम भी फागुन की खिली पिली कली से। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्री माथुर जी छायावादी कवियों की भांति रहस्यवादी एवं अलंकृत रूप में प्रस्तुत हुई, ऐसी अवस्था उनकी भाषा सारगर्भित संस्कृतनिष्ठ शुद्ध खड़ी बोली ही रहती है, किंतु जब वे प्रयोगवादी कवियों की भांति पूर्णतः आधुनिक कवियों की भांति काव्य में लीन होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है वे भाषा से दृष्टि से काव्य जगत में भी मानो कोई नया प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इंजन के मोटे बड़े पहिए, पिस्टन के आगे पीछे चलते गजों से नापते चले जाते हैं। चूंकि प्रयोगवादी कवि फ्रायड, टीएस इलियट, पाउंड आदि पाश्चात्य कवियों एवं विचारकों से अधिक प्रभावित थे, फलतः जिस प्रकार वे उन्मुक्त रूप से दूसरी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य में किए, उसी प्रकार प्रयोगवादी कवि हिंदी काव्यों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग खुलकर करते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है कि अपनी भावनाओं को पाठकों तथा कैसे पहुँचाए जाएं। जैसे सुने प्लेटफार्म से सब कुछ समेट, ट्रेन जिस पर से चली गई, जैसे किसी छोटे स्टेशन का मुसाफिर करे सांझ से प्रतीक्षा सुबह के पैसेंजर की। उपयुक्त पंक्तियों में उर्दू एवं फारसी के चलतु शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। फलतः जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, माथुर जी उन समस्त भाषाओं का वे लगाम ढंग से प्रयोग किया है, जिसे पाठक बखूबी समझते हैं और अथक परिश्रम किए एवं शब्दकोश को खोले काव्य को समझने में सफल हो जाते हैं। फिर भी श्री माथुर की भाषा वर्ड्सवर्थ के शब्दों में गंवई नहीं। श्री माथुर अपने भाव के शब्दों को इस प्रकार से पिरोने का प्रयत्न करते हैं कि वह पाठक के आत्मा को झंकृत करें या न करें, मस्तिष्क को उद्वेलित तो अवश्य कर दें। और प्रयोगवादी कवियों का मूल उद्देश्य भी यही रहा है। प्रयोगवादी कवियों की शैली मूलतः व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक होती है, क्योंकि वे अपना कट गया क्या हुआ? किसी का था फोन? हम इतना ही सुने कह रहे कोई काम हो इतना सुने, लेकिन बैलेंस नहीं हो। हाँ वो है 5300 वाली है।